आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/hindi पर जाएं।
एजियो ने बताया है कि दिसंबर में बोंडाई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया गया है और अभी भी टेरर का स्तर संभावित है। लेकिन सर्विस अपने वार्निंग सिस्टम का रिव्यू करेगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्पाई चीफ ने चेतावनी दी है कि अभी भी सिस्टम जनता के सामने आने वाले खतरे को कम करके बता रहा है। SBS हिंदी पर मैं हूँ अनीता बरार।
When we see autocratic regimes seek to silence dissidents and perceived enemies, we are shocked, but we shouldn't be surprised. When hackers exploit known vulnerabilities to compromise, we are shocked, but we certainly shouldn't be surprised. When anti-Semitism grows after being tolerated and normalized, we are shocked, but we should not be surprised.
AGO के डायरेक्टर जनरल माइक बर्जेस ने अपने सालाना भाषण में ये बात कही है, जो एजेंसी के अभी के आतंकी खतरे यानी टेरर थ्रेट के असेसमेंट का हिस्सा हैं। भाषण से पता चला है कि AGO ने दिसंबर में बोंडाई में हुई मास शूटिंग के बाद से 14 टेरर प्लॉट्स को नाकाम किया है। नेशनल स्पाई एजेंसी के बॉस का कहना है कि ऑस्ट्रेलिया का अभी का खतरा संभावित है, जिसका अर्थ है कि अगले 12 महीनों में ऑनशोर अटैक या अटैक प्लानिंग का 50% से अधिक मौका है। लेकिन उनका कहना है कि इससे पूरी कहानी पता नहीं चलती।
Next level on the scale is expected, which applies when we have intelligence about a specific attack. We do not. But we do know the environment is degrading and acts of politically motivated violence are becoming more likely than probable suggests.
जिस सिक्योरिटी माहौल की वो बात कर रहे हैं, उसमें ऑस्ट्रेलियाई लोगों के ऑनलाइन रेडिकलाइजेशन का खतरा, विदेशी एंटिटीज का दखल शामिल है। AGO ने ऑस्ट्रेलिया से मजबूत लिंक वाले दो लोगों की पहचान की है, जिन पर ईरान की तरफ से यहूदी टारगेट पर हमला करने का आरोप है। माइक बर्जेस का कहना है कि ईरान में रहने वाले एक ऑस्ट्रेलियाई नागरिक ने 2024 में बोंडाई में एक बिजनेस पर फायर बॉम्बिंग की साजिश रची थी, और इराक में रहने वाला एक पुराना ऑस्ट्रेलियाई निवासी मेलबर्न के एडास इजराइल सेनेगॉग पर हमले के पीछे था। बर्जेस का कहना है कि दोनों ही ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प से जुड़े थे और AGO जानता है कि वे कौन हैं, लेकिन उनका नाम नहीं बता सकता क्योंकि जांच जारी है। इंटेलिजेंस रिस्क के CEO नील फर्गस, जो इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड टेररिज्म के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने चैनल 9 के टुडे शो में बताया कि ये हमले विदेशों में हुई ऐसी ही घटनाओं के बाद हुए हैं।
If there was a trend, it would be that they're using proxies or criminals to carry out arson attacks against the Jewish Ambulance Service in Golders Green, against the Bank of America in Paris. There's no mass casualty attacks, thank God, involved in that.
Yeah.
But I think Burgess is correct to say we've got to be absolutely on our guard at the moment.
AGO की चेतावनी के साथ कि राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड हिंसा के कामों की संभावना बढ़ रही है, गृह मामलों के मंत्री टोनी बर्क ने ABC रेडियो को बताया कि अभी एक दशक पुराने टेरर थ्रेट वार्निंग सिस्टम का रिव्यू किया जा रहा है।
There is a review that's happening on that, that's right. And different countries, particularly our Five Eyes partners, everyone does it a slightly different way, and we're looking at that. The thing that matters is making sure that the Australian people, but also all the law enforcement agencies, get the best possible information.
Liberal Senator Jonathan Dunium का कहना है कि अगर सिस्टम काम नहीं कर रहा तो बदलाव प्राथमिकता होनी चाहिए.
All of these things combined with all of the events that have occurred over the last 12 months, including, of course, Bondi, are extreme concerns for us as a country. If the legal regimes need revisiting, if the framework around how we deal with terror-related matters need revisiting, then let's do that as a matter of urgency.
इस बीच जब ऑस्ट्रेलिया की स्पाई एजेंसी अपनी टेरर थ्रेट गाइडेंस जारी कर रही थी, तो तथाकथित इस्लामिक स्टेट ग्रुप, जो कि एक डेजिनेटेड टेररिस्ट नेटवर्क है, उसके एक सदस्य के पार्टनर को देश में फिर से प्रवेश दे दिया गया। सीरिया में रह रही महिला पर पहले एक टेम्परेरी एक्सक्लूजन ऑर्डर था जिसे हटा दिया गया ताकि वो घर आ सके। बर्ग ने एबीसी रेडियो को बताया है कि महिला के लौटने पर उस पर बहुत उच्च स्तर की निगरानी यानी हाई लेवल का सर्विलेंस होगा।
But we received the final advice yesterday that we can no longer have an exclusion condition any longer for her. We've checked with our agencies, they are ready. So that permit gets issued. What it then means is the conditions that do apply to her are everything that is possible. So, for example, she will have to report and we will have to know where she lives, where she works, where she studies.
National Party ke leader Matt Canavan ka kehna hai ki sarkar desh ki raksha aur suraksha ke paksh mein khadi nahi hai.
We feel the government should have done more to keep people like this who have associated with terrorist organisations, the world's worst terrorist organisations in the world, they should have been kept out of our country.
कल हुई ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट कॉन्फ्रेंस का विषय भी ऑस्ट्रेलियाई जमीन के बाहर से सिक्योरिटी के खतरे थे। इसका विषय था सिक्योरिंग द रीजन फॉर अनसर्टेनिटी। ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी में स्ट्रेटेजिक एंड डिफेंस स्टडीज सेंटर के प्रोफेसर पीटर डीन ने क्षेत्रीय सुरक्षा खतरे का सामना करने के लिए एशियो की तैयारी की बात दोहराई है। उनका कहना है कि एक देश के तौर पर आत्मनिर्भरता ही कुंजी है। उन्होंने 2026 की राष्ट्रीय रक्षा रणनीति यानी नेशनल डिफेंस स्ट्रेटजी का जिक्र किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया से इंटेलिजेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए यूएस पर निर्भरता खत्म करने की बात कही गई है।
That is dead. So what is self-reliance in the face of a major war potential against a major power threat to look like? And as the NDS tells us, it's starting to look like more industrial self-reliance. Yeah. It's starting to look like more national resilience and social cohesion. It's starting to look like civil preparedness. It's starting to look like all of these things.
जब विशेषज्ञों ने देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने की बात की तो रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने ऑकस के भविष्य पर अपनी राय दी। ये अमेरिका और ब्रिटेन के साथ एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौता है जिस पर 2021 में हस्ताक्षर किए गए थे। मास का कहना है कि वो इस डील के प्रैक्टिकल होने और भविष्य को लेकर हो रही आलोचना को स्वीकार करते हैं जिसमें पूर्व प्रधानमंत्रियों और एएसपीआई यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के पहले प्रमुख की आलोचना भी शामिल है। लेकिन उनका कहना है कि ये डील ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है।
In regards to all three countries, we have now seen changes of government in terms of political persuasion in all three, whilst the commitment to AUKUS has been maintained in all three.
Lowy Institute ke ek poll ke anusar is deal ko janta ka bhi support hai. Lowy Institute ke survey mein ye bhi paya gaya ki itihas mein pehli baar adhiktar australiyai asurakshit mehsoos kar rahe hain. Lekin Charles Leon Jones samet researchers ka kehna hai ki rashtrapati Donald Trump ke administration ke zimmedari se kaam karne par bharosa kam hone ke bawajood lagbhag 3/4 jawab dene wale Australia ka US ke sath alliance ka support karte hain.
And what that shows is that Australians remain pragmatic about the global environment we face and understand that world events impact here at home.
SBS न्यूज के लिए कैमली बियांची और SBS हिंदी के लिए इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया अनीता बरार ने।
SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।